ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम स्कंद 6 अध्याय 4। अध्याय का नाम है प्रजापति दक्ष द्वारा भगवान से की गई हंस गुह्य प्रार्थनाएं। श्लोक संख्या है 30। मेरे पीछे बोले, यस्मिन् यतो येन च यस्य यस्मिन् यन्यो यथा कुरुते कार्यते च परावरेषां परमं प्राक्प्रसिद्धं तन्ब्रह्म तन्हेतुरनन्यदेकम्। शब्दार्थ बोलिए। यस्मिन् जिसमें, भगवान या परम धाम में, ऐसा लगता है कोई है ही नहीं, इतनी आवाज कम आ रही है, इतनी कम आवाज आ रही है, दिखाई दे रहे इतने लोग, सब लोग बोली है ऊंचे स्वर में। यस्मिन् जिसमें भगवान या परम धाम में, यतः जिससे हर वस्तु उद्भूत है, ये न जिसके द्वारा हर वस्तु निर्मित है, च भी यस्य जिसकी हर वस्तु है, यस्मै जिसको हर वस्तु अर्पित की जाती है, यत जो, यह जो, यथा जिस तरह, कुरुते संपन्न करता है, कार्यते कराया जाता है, च भी पर अवरेशाम भौतिक तथा आध्यात्मिक दोनों जगतों में, परमम परम प्राक उद्गम प्रसिद्धम हर एक को भली भांति ज्ञात, तत् वह ब्रह्म परब्रह्म, तत् हेतु समस्त कारणों के कारण, अनन्यत अन्य कारण ना होते हुए, एकम अद्वितीय। अनुवाद मेरे पीछे बोलिए, परम ब्रह्म कृष्ण प्रत्येक वस्तु के परम आश्रय तथा उद्गम है, हर कार्य उन्हीं के द्वारा किया जाता है, हर वस्तु उन्हीं की है और हर वस्तु उन्हीं को अर्पित की जाती है, वे ही परम लक्ष्य हैं और चाहे वे स्वयं कार्य करते हों या अन्यों से कराते हों, वे परम कर्ता हैं। वैसे उच्च तथा निम्न अनेक कारण हैं, किंतु समस्त कारणों के कारण होने से वे परम ब्रह्म कहलाते हैं, जो समस्त कार्यकलापों के पहले से विद्यमान थे, वे अद्वितीय हैं और उनका कोई अन्य कारण नहीं है। मैं उनको सादर प्रणाम करता हूँ। तो देखिए, श्लोक की रचना किस प्रकार हुई है। इस श्लोक में जितने शब्द हैं उनमें बहुत ज़्यादा बातें आ गई हैं, बहुत ज़्यादा बातें आ गई हैं। इस संस्कृत के जो श्लोक हैं इनकी रचना इस प्रकार से होती है कि थोड़े शब्दों में बहुत बात आ जाती है। तो इसको हम समझेंगे, इस श्लोक जो है किस प्रकार से बना है। इसमें 13 बातें हैं, एक एक करके हम समझेंगे। सबसे पहली बात समझिए कि यस्मिन, यतः, येन, यस्य, यस्मै, यत, यहा, ये सब जो शब्द हैं संस्कृत में इनका क्या अर्थ होता है। यस्मिन का मतलब जिसमें, यतः का मतलब जिससे, येन का मतलब जिसके द्वारा, यस्य का मतलब जिसका, यस्मै माने जिस के लिए, यत माने जो। तो इस प्रकार से या शब्द आता है, सह होता है उसके लिए, और यह का मतलब होता है जिसके लिए, है ना, जो सा, है ना। तो यहाँ पर जो दक्ष प्रजापति प्रार्थना कर रहे हैं, तो कथा प्रसंग में भी आइए कि जो दक्ष प्रजापति हैं वो भगवान की प्रार्थना कर रहे हैं। और ये दक्ष प्रजापति पिछले जन्म में ब्रह्मा जी के पुत्र थे, ब्रह्मा जी के अंगूठे से उत्पन्न हुए थे, दक्षो अंगुष्ठात, ब्रह्मा जी के अंगूठे से उत्पन्न हुए थे। और इनका विवाह हुआ था स्वयंभू मुनि की, स्वयंभू मनु की पुत्री प्रसूति के द्वारा, और उनकी 16 कन्याएं थीं। 16 कन्याओं में सबसे छोटी कन्या थी सती, सती का विवाह हुआ था शिव जी से। तो सती से कोई पुत्र उत्पन्न नहीं हुआ, शिव और दक्ष के बीच में कुछ ऐसा तनाव पैदा हुआ कि सती को अपना शरीर छोड़ना पड़ा, और सती ने जो है अपने पिता का त्याग कर दिया, और पिता का त्याग करने के लिए अपने शरीर का भी त्याग कर दिया कि शरीर तुमने दिया है तो मैं शरीर का भी त्याग कर रही हूँ, तो तुम्हारा मेरे से अब कोई पिता का संबंध नहीं है, मैं तुम्हारी पुत्री नहीं, ना तुम मेरे पिता, इस शिव जी के तुम जो है विरोधी हो। और फिर वो सती जो है अब जन्म लेती है पार्वती, जो पर्वतराज हिमालय की पुत्री के रूप में शिव जी की पत्नी बनी। और दक्ष ने जो अपराध किया शिव जी का, तो उसमें दक्ष की भी मृत्यु हुई, और उसी दक्ष ने अब दोबारा जो जन्म लिया है उस स्वयंभू मनु के वंश में प्रचेताओं के पुत्र के रूप में जन्म लिया है। तो 10 प्रचेता जो है ये भाई हैं, 10 भाई, उनकी एक ही पत्नी है और उससे एक ही पुत्र हुआ, 10 पिता और एक माता। तो ये दक्ष जो है ये स्वयंभू मन्वंतर के जब आधा बीत गया था, तब दक्ष हुए थे। तो महाराज उत्तानपाद का जो वंश था वो अब यहाँ क्या हो गया, मतलब बंद हो गया, वंश परंपरा ही अब जो है बंद हो गई, क्योंकि दक्ष वन में गए तपस्या करने के लिए, तो वंश परंपरा बंद हो गई उत्तानपाद की। तो स्वयं मनु ने फिर अपने दूसरे पुत्र, जो बड़े पुत्र थे प्रियव्रत, उत्तानपाद के बड़े पुत्र थे प्रियव्रत, जो कि नैष्ठिक ब्रह्मचर्य का नियम ले चुके थे, उनसे कहा, आग्रह किया कि तुम विवाह करो और अब वो वंश जो स्वयंभू मनु का वंश है वो उसको चलाओ, क्योंकि प्रत्येक मनु का जो शासनकाल है वो एक मन्वंतर का होता है। तो स्वयंभू मनु स्वयं तो शासन नहीं करते, अपने वंश, उनके वंश के जो राजा हैं वो शासन करते हैं। तो उत्तानपाद का जो वंश है वो यहाँ नष्ट ही हो गया एक प्रकार से, क्योंकि दक्ष जो वंश को धारण करने वाले वो जो है तपस्या करने के लिए चले गए वन में। तो महाराज प्रियव्रत ने फिर राज्य संभाला और उनका जो वंश है वो फिर स्वयंभू मन्वंतर, पूरे स्वयंभू मन्वंतर यानी आधा जो स्वयंभू मन्वंतर बचा था, तो उसमें महाराज प्रियव्रत के वंशजों ने फिर उसको शासन किया। और एक मन्वंतर होता है 30 करोड़ साल का, तो 15 करोड़ साल तक स्वयंभू मनु के जो छोटे पुत्र तानपा थे उनके वंश ने शासन किया, और फिर 15 करोड़ साल जो आधा मनवंतर था तो उसमें तानपा के बड़े भाई प्रियव्रत के वंश ने शासन किया। और ये जो दक्ष हैं ये तपस्या कर रहे हैं बहुत लंबी, आप सोचिए कितनी लंबी तपस्या कर रहे हैं कि अब जो है इनको भगवान ने दर्शन दिया और भगवान की प्रार्थना कर रहे हैं, तो कितना समय हो गया है आप विचार करिए कितना समय हो गया है। आधा तो स्वयंभू मनमंत्र जो पहला था वो बीत गया है, फिर दूसरा मनमंत्र बीत गया, तीसरा मनमंत्र बीत गया, चौथा मनमंत्र बीत गया, पांचवा मनमंत्र बीत गया और छठवां मनमंत्र चल रहा है। क्या समझे आप कितनी लंबी तपस्या की उन्होंने, आप सोचिए आधा मनमंत्र तो वो हो गया ठीक है, और फिर दूसरा तीसरा चौथा पांचवा पूरे पूरे मनमंत्र कितने हुए, चार ठीक है, तो चार मन और छठवें मनमंत्र में अब जो भी समय हो कितना समय बीत गया ये पता नहीं है, तो मान लो छठवें मनमंत्र का प्रारंभ हो है जो भी हो तो कम से कम कितना समय बीत गया, 4.5 मनमंत्र, और एक मनमंत्र 30 करोड़ साल होते हैं, तो कितना तपस्या की इन्होंने, 135 करोड़, 1 अरब 35 करोड़, 1 अरब 35 करोड़ साल कम से कम इन्होंने तपस्या की है, और अब भगवान प्रकट हुए हैं इनसे जो है वर मांगने के लिए कह रहे हैं, और ये भगवान की प्रार्थना अर्पित कर रहे हैं, है ना। तो इस प्रार्थना में दक्ष की जो है बहुत बड़ी योग्यता प्रकट होती है कि बड़ा इसमें जो है गहरा भाव, और एक श्लोक के अंदर कितनी बातें बताई हैं। तो सबसे पहला शब्द क्या है आप देखें बताइए, यस्मिन, सबसे पहला शब्द है यस्मिन, यानी जिसमें, तो इतने में ही जो है एक पूरी बात आ गई कि जिसमें प्रत्येक वस्तु आश्रित है, यस्मिन मतलब वो सबसे लास्ट में कहेंगे तद ब्रह्म, वो ब्रह्म है और उसको मैं प्रणाम करता हूँ, अगले श्लोक में भी वो ये चल रहा है। तो प्रभुपाद ने तो इस श्लोक का तात्पर्य दे दिया क्योंकि बहुत बातें इसमें आ गई, लेकिन वो जो वाक्य है वो पूरा नहीं हुआ, वाक्य तो अगले श्लोक में पूरा होता है जिसमें वो कहते हैं तम अहम प्रपद्ये ये तस्मे नमो अनंत गुणाय भूमने, तस्मे नमो उसको मैं नमस्कार करता हूँ, है ना। तो पूरा वाक्य तो अगले श्लोक में पूरा होता है, अभी वाक्य पूरा नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पर दक्ष जो है भगवान का गुणगान कर रहे हैं। तो सबसे पहला शब्द क्या है, यस्मिन, जिसमें प्रत्येक वस्तु आश्रित है। इसके बाद दूसरा शब्द क्या है, यता, यतो, तो यथा शब्द होता है उसका यतो बन जाता है इस श्लोक में, यथा, यथा का मतलब है जिससे प्रत्येक वस्तु निकली है। दूसरी बात, संपूर्ण जगत जिससे निकला है, ये दूसरी बात हो गई। फिर तीसरा शब्द क्या है, येन, येन का मतलब है प्रत्येक कार्य जिसके द्वारा किया जाता है, प्रत्येक कार्य जिसके द्वारा होता है, कोई भी कार्य आप करते हैं लेकिन जब तक भगवान की इच्छा नहीं होती तब तक वो कार्य सफल नहीं हो सकता, तो सब परम कर्ता वही है प्रत्येक, येन, है ना। फिर चौथा शब्द क्या है, यश, यश का मतलब प्रत्येक वस्तु जिसकी है, संपूर्ण जगत जिसका है, मालिक वही है, है ना, जिसका है। अच्छा, फिर पांचवा शब्द क्या है, यस्मे, यस्मे का मतलब है प्रत्येक वस्तु उन्हीं को अर्पित है, यस्मे, प्रत्येक वस्तु उनको अर्पित है, यस्मे, पांचवी बात। फिर छठवां क्या है, यत, यत यो, ये इकट्ठा हो गया ना, यद यो, यत, है ना, तो यत का मतलब है जो परम लक्ष्य है, जो हमारे जीवन का परम लक्ष्य है। फिर यहां, फिर है यह और यथा कुरुते, ये पूरी बात यहां पर आती है, यह यथा कुरुते यानी जो जिस प्रकार भी करते हैं, और फिर कार्यतेचा अथवा करवाते हैं, तो वे भगवान जो कुछ भी करें और जो कुछ भी करवाएं, कुछ करते हैं स्वयं और कुछ करवाते हैं, है ना। जो जिस प्रकार कार्य करें अथवा कराएं, पर अवर एशाम, शब्द क्या है, पर अवर एशाम, उच्च कारण हो या निम्न कारण है, कोई भी कार्य होता है तो ऊंचे कारण भी होते हैं, कुछ नीचे कारण भी होते हैं, है ना। तो परम, लेकिन वो परम कारण है, अंत में फिर क्या हो गया है, परमम, पर परम कारण वही है। ऐसा लगता है कि ये कार्य इन्होंने किया और इनसे भी बड़े कार्य इनके कारण हुआ, इनके कारण इन्होंने कार्य किया, तो ये भी कारण है, ये भी कारण है, और फिर इनके कारण कोई दूसरा है, उसने किया तो उससे इन्होंने किया, इन्होंने किया, जैसे कई कारण बनते हैं और ऊंचे नीचे कारण बहुत बनते हैं, लेकिन परम कारण कौन है, वही परमम है, परमम। इसमें प्राग प्रसिद्धम, प्राग प्रसिद्धम का मतलब है पहले से ही जो प्रसिद्ध हैं, उनका जो यश है वो पहले से ही बना हुआ है, है? अभी तो कोई भी जो है अभिनेता है वो उसकी प्रसिद्धि होती है और फिर कुछ समय के बाद प्रसिद्धि खत्म हो जाती है, कोई जानता भी नहीं कि वो थे पहले, है ना। तो ऐसी प्रसिद्धि, लेकिन वो प्राग प्रसिद्धम, वो जो भगवान है वो प्राग प्रसिद्ध है, पहले से ही प्रसिद्ध है, है? किसी ने उनको प्रसिद्ध नहीं किया, किसी ने उनको प्रसिद्ध नहीं किया, वो पहले से प्रसिद्ध है, प्राग प्रसिद्धम है तद ब्रह्म। तो वो तद ब्रह्म है, तद ब्रह्म का मतलब वो ब्रह्म है, एक तो अहम ब्रह्म है, दूसरा तद ब्रह्म। तो अहम ब्रह्म, ये भी वेदों का वाक्य, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, लेकिन मैं ब्रह्म हूँ, लेकिन मैं प्राग प्रसिद्धम नहीं हूँ, मैं परम कारण नहीं हूँ, है ना। तो अहम ब्रह्म जो है ये नहीं है, ये तद ब्रह्म जो है उसके सब गुण हैं, ये जितने गुण बताए गए सब तद ब्रह्म के हैं, तद ब्रह्म है, है? फिर है तद ब्रह्म तद हेतु, हाँ उसका कारण, तद हेतु का मतलब उसका कारण, न अन्यत, न अन अन्यत, यानी अन्य कोई नहीं है, उसका कारण अन्य कोई नहीं है, वो परम कारण है लेकिन उसका कारण अन्य कोई नहीं है, उसके अलावा और कोई कारण उसका नहीं है, हाँ एकम, वही एकमात्र अद्वितीयम। तो इस प्रकार से 13 बातें इस श्लोक में दक्ष ने कही हैं। अब प्रभुपाद ने जो तात्पर्य लिखा है तो उसमें कुछ शब्दों को लेकर के ही तात्पर्य दिया, नहीं तो तात्पर्य बहुत लंबा हो जाता है ना। तो प्रभुपाद जो है इसमें जो शब्द ले रहे हैं, जिसका तात्पर्य लिख रहे हैं प्रभुपाद, तो वो क्या है, यतः, यानी जिससे प्रत्येक वस्तु निकली है, तो इसी को लेकर के प्रभुपाद तात्पर्य का ज़्यादा हिस्सा प्रभुपाद इसी बात को लेकर के कि वही सबसे बड़े कारण है, उन्हीं से सब कुछ निकला है। तो प्रभुपाद लिखते हैं तात्पर्य में, शिला प्रभुपाद की जय। भगवान कृष्ण आदि कारण है, जैसा कि भगवद गीता में पुष्टि हुई है, अहम सर्वस्य प्रभुवः, 10वें अध्याय का 8वां श्लोक, अहम सर्वस्य प्रभुवः। यहाँ तक ये भौतिक जगत जो प्रकृति के गुणों के अधीन संचालित होता है, भगवान द्वारा उत्पन्न किया जाता है, भगवान इससे अलग है। इस भौतिक जगत में माया का बंधन भी है, ये तो भी भगवान के द्वारा ही उत्पन्न हुआ है। आगे रूपा लिखते हैं, इसलिए भौतिक जगत से भी उनका घनिष्ठ संबंध है, क्योंकि उनसे निकला है ये भौतिक जगत, इसलिए भगवान को क्या कहा जाता है, जगत पिता, जगत पिता, और जगन्नाथ, जगत के नाथ, और कई शब्द हैं जगत से, जगदीश, जगदीश, और जगत से और भी शब्द हैं, है? जगन्निवास है, जगदीश्वर, जगदीश, हाँ वो तो है, जगत आत्मा है, जगत कर्ता। तो जगत, तो भगवान का इस भौतिक जगत से घनिष्ठ संबंध है, लेकिन जब कोई व्यक्ति ऐसे कहता है, मायावादी कहते हैं कि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, तो बहुत गलत, बहुत गलत बात है कि जगत भगवान ने उत्पन्न किया। यद्यपि जगत में बहुत कष्ट मिल रहे हैं हमको, है ना, लेकिन जो कष्ट मिल रहे हैं वो क्यों कष्ट मिल रहे हैं, क्योंकि हम जगत को भोगना चाहते हैं, लेकिन जगत मिथ्या कहना बहुत गलत है, जगत अनित्य है, आप अनित्य कह सकते हैं, टेम्परेरी कह सकते हैं, लेकिन मिथ्या नहीं है, मिथ्या का मतलब क्या, जो है नहीं उसको जो है मिथ्या कहते हैं। तो वो बिल्कुल गलत है, मिथ्या कहना बिल्कुल गलत है। अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम, भगवान भी कहते हैं अनित्यम, जगत अनित्य है, टेम्परेरी है, लेकिन मिथ्या नहीं है। आपका शरीर भी टेम्परेरी है लेकिन मिथ्या नहीं है। जो मायावादी लोग हैं वो मिथ्या कहते हैं। मिथ्या का मतलब क्या है कि जो है ही नहीं, आपको दिखाई दे रहा लेकिन है ही नहीं। तो जो मायावादी हैं तो वो अपराधी हैं, भगवान के अपराधी हैं। क्यों? क्योंकि भगवान जगत के पिता हैं, जगत के निर्माता हैं, जगत के पालन करने वाले हैं, जगत को उत्पन्न करने वाले हैं, हैं? तो उनका बनाया हुआ जगत आप कहते हैं मिथ्या, कितना गलत है, बहुत गलत है ना। तो जगत मिथ्या नहीं है। तो प्रभुपाद क्या लिखते हैं कि भगवान द्वारा उत्पन्न किया जाता है, इसलिए भौतिक जगत से भी उनका घनिष्ठ संबंध है। यदि भौतिक जगत उनके शरीर का अंश ना होता तो परम कारण स्वरूप भगवान अपूर्ण होते। तो प्रभुपाद, तो भगवान की पूर्णता ऐसी में है कि भौतिक जगत भी भगवान का शरीर है। इसलिए हम सुनते हैं वासुदेवा सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभा। यदि कोई जान लेता है कि वासुदेव ही समस्त कारणों के आदि कारण है तो वह पूर्ण महात्मा बन जाता है। तो इस जगत में भी भगवान की सब व्यवस्था हो रही है, भगवान का शासन चल रहा है। वासुदेवा सर्वम, कि भगवान ही इस जगत में सब कुछ चला रहे हैं, सबका पालन कर रहे हैं, सबका नियंत्रण कर रहे हैं। तो ये जो है भावना है, ये कृष्ण भावना अमृत है ना। तो प्रभुपाल लिखते हैं कि तो वो पूर्ण महात्मा बनता है। वो महात्मा नहीं कहलाता है जो ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या बोलता है, जगत को मिथ्या बोलता है, वो तो अपराधी है भगवान का, वो महात्मा नहीं है। बहुनाम जन्म राम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभा। जो ये मानता है कि वासुदेव सब कुछ है इस जगत के, यानी माता भी, पिता भी, भाई भी, मित्र भी, और संपत्ति भी, सब कुछ है आप ही हैं जगत के, है? तो वो जो है महात्मा कहलाता है। वो शरण लेता है भगवान की, माम प्रपद्यते, है ना। लेकिन मायावादी लोग इस बात का भी उल्टा अर्थ निकालते हैं, वासुदेवा सर्वम, वासुदेव सब कोई है, तो हम भी वासुदेव, आप भी वासुदेव, ये सब जितने हैं सब वासुदेव हैं। ये बहुत बड़ा अपराध, बहुत बड़ा अपराध। वासुदेवा सर्वम का मतलब है कि भगवान सब कुछ है। कैसे, क्या है सब कुछ? आप मेरे सब कुछ हैं, आप मेरे माता भी हैं, पिता भी हैं, भाई भी हैं, रक्षक भी हैं, पुत्र भी हैं, सब कुछ आप ही मेरे हैं। तो इसलिए भी इस भावना से हम कहते हैं आप सब कुछ हैं, भगवान सब कुछ हैं। लेकिन उन्होंने क्या उल्टा अर्थ निकाल दिया, भगवान सब कुछ हैं तो हम भी भगवान, आप भी भगवान, और भगवान कुछ नहीं है और हम सब भगवान हो गए। भगवान को मिटा दिया और हम सब भगवान बन गए। कितना ज्ञान, बहुत बड़ा ज्ञान है ना। तो इसी तरह से होता है कि जो मायावादी लोग हैं वो शास्त्रों के शब्दों के जो है मतलब अर्थ के अनर्थ कर देते हैं, शास्त्रों के शब्द के अर्थ के अनर्थ कर देते हैं। जैसे कि मोतीलाल नेहरू थे, जवाहरलाल नेहरू के पिता मोतीलाल नेहरू, बहुत बड़े वकील थे। तो उनके समय में एक जो जुर्मी था उसको फांसी होनी थी, उसने जो है इनसे बात की कि मुझे बचा दो, आप वकील हैं मुझे बचा लो। बोले ठीक है मैं बचा लूँगा। अब फांसी होनी थी, फांसी पर उसको लटकाया गया, फांसी पर लटकाया गया तो उन्होंने तुरंत कहा कि फांसी पर उसको लटकाया गया है, अब उसको उतारो तुरंत, क्योंकि उसमें कानून यह था कि ही शुड बी हैंग्ड, उसको फांसी पर लटका दिया जाए। तो फांसी पर लटका दिया जाए तो अब उतार दो, आप जो उसको बचा लिया। फिर कानून में जो है ये शब्द जोड़े गए, ही शुड बी हैंग्ड टिल डेथ। तो वकील लोग हैं, कानून के शब्दों का जो है कुछ भी अर्थ निकाल लेंगे, फिर कानून बदलना पड़ता है, कानून के शब्द बदलने पड़ते हैं। इसी प्रकार मायावादी भी भगवान के शब्दों का अर्थ का अनर्थ कर लेते हैं। भगवान सब कुछ है तो वो कहते हैं हाँ भगवान सब कुछ, हम भी भगवान, आप भी भगवान, ये भी भगवान, और जो भगवान है वो खत्म हो गए, हम सब भगवान बन गए। वासुदेवा सर्वम। एक श्लोक भी है ना, तुमेव माता च पिता, तुमेव तुमेव बंधुश्च सखा, तुमेव तुमाव विद्या विद्रविणं, तुमेव सर्वम मम देव देव, तुमेव सर्वम आप ही सब कुछ है, आप ही सब कुछ है, मम मेरे सब कुछ आप ही हैं, माता भी आप हैं, पिता भी आप हैं, विद्या भी आप हैं, धन भी आप हैं, भाई भी आप हैं और मित्र भी आप हैं, तो आप ही सब कुछ हैं। तो एक तो ये हो गया है, और दूसरा क्या हो गया कि आप ही सब कुछ है, मतलब हम भी आप हैं या भी आप हैं, सब आप हो गए और भगवान हो गए समाप्त, भगवान को खत्म कर दिया और हम सब भगवान बन गए, है ना, अज्ञान है ना। तो यहाँ प्रभुपाद लिखते हैं कि वो पूर्ण महात्मा बन जाता है, वो पूर्ण महात्मा बन जाता है, है? जो भगवान को अपना सब कुछ मान लेता है कि आप ही मेरी जो है माता पिता रक्षक, पिता पुत्र सब कुछ आप हैं। आगे प्रभुपाद लिखते हैं, ब्रह्म संहिता 5:1 घोषित करती है, ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। अब प्रभुपाद जो है तात्पर्य बड़ा, प्रभुपाद का जो तात्पर्य है वो वैसा है जिसे कहते हैं कि साकारवादी, कि कृष्ण एक व्यक्ति हैं, परम पुरुष हैं। अब यत यत करके जो ब्रह्म दक्ष ने प्रार्थना की है कि वो है, तो कोई भी व्यक्ति कहेगा कोई निराकार वस्तु होगी जिसका जगत है, जिसने जगत बनाया, लेकिन प्रभुपाद क्या लिखते हैं, ईश्वर परमा कृष्ण आप ही परम कृष्ण ईश्वर हैं। सच्चित आनंद विग्रह, उनका शरीर कैसा है, सच्चित आनंद, सत का मतलब कभी नष्ट नहीं होता है, बुढ़ापा नहीं आता है, बीमारी नहीं आती है, मृत्यु नहीं होती है। सच्चित का मतलब है पूर्ण ज्ञान है, हमारे शरीर में अज्ञान है ना, भगवान का शरीर पूर्ण ज्ञान है। आनंद, उनके शरीर में पूरा आनंद है, हमारे शरीर में कष्ट ही कष्ट भरे हैं, हमारा शरीर जो है असत असत अचित निरानंद है, तीन तत्वों से बना है, असत असत का मतलब है टेम्परेरी, अचित का मतलब अज्ञान, निरानंद का मतलब कष्ट। हमारा शरीर तीन चीजों से बना है, अनित्य है और अज्ञान है और दुख, और भगवान का शरीर तीन तत्वों से बना है, सत चित आनंद, उल्टा है ना, सच्चिदानंद 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 विग्रह अनादिरादिर गोविंद, तो उनका कोई आदि नहीं है और वो सबके आदि हैं, सर्व कारण कारणम, सब कारणों के कारण है ना। आगे प्रभुपाद लिखते हैं, गोविंद कहे जाने वाले कृष्ण परम नियंता है, उनका शरीर नित्य आनंदमय तथा आध्यात्मिक है, वे सबों की उद्गम है, उनका कोई अन्य उद्गम नहीं, क्योंकि वे समस्त कारणों के आदि कारण है, परब्रह्म तद्ब्रह्म समस्त कारणों के कारण है। तो यहाँ तद्ब्रह्म जो अंतिम शब्द है तद्ब्रह्म, इसकी व्याख्या प्रभुपाद कर रहे हैं। तो कई शब्द प्रभुपाद ने छोड़ दिए है ना, तो शुरू का जो शब्द है वो और अंतिम दो शब्दों पर रूपा तात्पर्य लिख रहे हैं। तद्ब्रह्म परम ब्रह्म समस्त कारणों के कारण है, अहम ब्रह्म नहीं, अहम ब्रह्म नहीं, समस्त कारणों का कारण अहम ब्रह्म नहीं हूँ, मैं भी ब्रह्म हूँ लेकिन मैं सब समस्त कारणों का कारण नहीं हूँ, परम ब्रह्म तद्ब्रह्म समस्त कारणों के कारण है, क्योंकि उनका कोई कारण नहीं है। अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम, गोविंद अर्थात कृष्ण समस्त कारणों के कारण है, किंतु गोविंद रूप में उनके प्राकट्य का कोई कारण नहीं है, गोविंद विविध रूपों में विस्तार करते हैं फिर भी वे सारे रूप एक हैं। अब यहाँ कहा एकम एकम, तो प्रभुपाद समझा रहे हैं कि एकम का क्या मतलब है, उनके तो बहुत विस्तार हैं, तो कोई कभी राम भी तो हैं, नरसिंह भी तो हैं, बराह भी तो हैं, एक कहाँ है, तो प्रभुपाद कहते हैं कि एक ही हैं। कैसे एक हैं, गोविंद विविध रूपों में विस्तार करते हैं फिर भी वे सारे रूप एक हैं, जैसा कि मध्वाचार्य ने पुष्टि की है, अनन्य सदृशा भावात एको रूपात अभेदतः, कृष्ण का ना तो कोई कारण है ना कोई सादृश्य, वे एक हैं क्योंकि उनके विविध रूप यथा स्वांश तथा विभिन्नांश उनसे अभिन्न है। तो यहाँ प्रभुपाद का तात्पर्य समाप्त हुआ। अब इस श्लोक की जो हिंदी कविता है ये विष्णुप्रिया देवी ने लिखी है, इसको मैं सुना रहा हूं। आपसे ही निकला ये जगत, आपसे ही निकला ये जगत और आप में ही है स्थित प्रभु, अपने आप स्वतः ही तो निर्माण है इसका किया प्रभु, अपने आप स्वतः ही तो निर्माण है इसका किया प्रभु, इसकी उत्पत्ति को नहीं किसी अन्य का लिया आसरा, इसकी उत्पत्ति के लिए नहीं किसी अन्य का लिया आसरा, आपके लिए ये है बना और नितांत है आपका, आपके लिए ये है बना और नितांत है आपका। इसको बनाने वाले आप इस रूप में प्रकट भी आप हैं, इसको बनाने वाले आप इस रूप में प्रकट भी आप हैं, बनने बनाने की सभी प्रक्रिया भी प्रभु आप ही हैं, आप स्वयं ही हैं प्रभु, सबसे काम भी आप ही लें, आप स्वयं ही हैं प्रभु, सबसे काम भी आप ही लें, कार्य कारण भेद रहित स्वतः सिद्ध स्थित आप रहें। सत्य तो ये है आप स्वयं ही सबके कारण बने, सत्य तो ये है आप स्वयं ही सबके कारण बने, जीव जगत के भेद रहित सर्वथा अद्वितीय आप रहें। स्वयं ब्रह्म हैं आप प्रभु, प्रसन्न हो मुझ पर मुझ अकिंचन पर, स्वयं ब्रह्म हैं आप प्रभु मुझ प्रसन्न हो मुझ अकिंचन पर, शरणागत हुआ आपके सब अन्य आश्रय छोड़कर, शरणागत हुआ आपके सब अन्य आश्रय छोड़कर। इस प्रकार से हमने कुछ चर्चा की है इस श्लोक के ऊपर, लेकिन कुछ चर्चा की है और बाकी चर्चा आप लोगों के ऊपर है, तो अभी हमारे पास समय है तो आप लोगों की ओर से कुछ चर्चा, आप लोगों की ओर से कोई प्रश्न और कोई समीक्षा। हाँ जी, हैंड माइक है, चालू है, हैंड माइक चालू कर दिया। थोड़ा और जोर से बोले। ये आवाज साफ नहीं आ रही, थोड़ा आप आगे आ जाएं। हाँ, तो माइक की आवाज को साफ नहीं। हाँ जी, वृंदावन, वृंदावन चंद्र महाराज ने, प्रचेताओं ने तपस्या की, उसके बाद बाहर आए तो सारे तरफ वृक्ष थे। हाँ, हाँ, तपस्या में भगवान के दर्शन हुए थे, उन्हें क्रोध आया। हाँ, विरोधाभास लगता है, दक्ष के पिता थे, दस प्रचेता दक्ष के पिता थे, उन्होंने 10,000 साल तक तपस्या की और फिर भगवान ने उनको आदेश दिया, भगवान ने उन्हें आदेश दिया कि तुम्हें एक ही पत्नी प्राप्त होगी। 10 जो प्रचेता 10 भाई इतने एक दूसरे से हिले मिले थे कि एक ही पत्नी उनकी रहेगी, भगवान ने उनको स्वयं आदेश दिया कि एक ही पत्नी आपको प्राप्त होगी, है ना। और भगवान ने आदेश दिया और भगवान के आदेश से वो आए हैं और फिर वृक्षों को जलाने लगे। तो उसके तात्पर्य में भी प्रभुपाद जी समर्थन करते हैं, प्रभुपाद समर्थन करते हैं कि जो जब वृक्ष ही वृक्ष हो गए तो फिर प्रजा के रहने के लिए जगह नहीं, और वो जो है प्रजा का पालन करेंगे तो प्रजा कहाँ रहेगी, तो वृक्ष को जला रहे थे, तो अपने मुखों से उन्होंने अग्नि उत्पन्न की वृक्षों को जलाने के लिए। तो ऐसा वर्णन किया गया कि क्रोध से उन्होंने वृक्षों को जलाना शुरू किया, लेकिन वो क्रोध नहीं है, वो क्रोध नहीं है, कभी कभी क्रोध कहा जाता है लेकिन वास्तव में वो क्रोध नहीं है, वो भगवान का आदेश है। अर्जुन को भी जो है भगवान ने जैसे आदेश दिया युद्ध करो, तो क्रोध पूर्वक युद्ध कर रहे हैं, तो उसमें क्रोध होता भी है, लेकिन अगर भगवान का आदेश है तो वो क्रोध जो है वो नियंत्रित है। तो इसलिए क्रोध भी आवश्यक होता है और आपके दैनिक जीवन में भी क्रोध आवश्यक होता है, ये कभी नहीं कहा जा सकता कि आप क्रोध ना करें। रूप गोस्वामी कहते हैं वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम जिह्वा वेगम जो विषेद धीरा, तो क्रोध के वेग को नष्ट नहीं करना है और आप नष्ट कर भी नहीं सकते क्रोध के वेग को, उसकी दिशा आप जो है नियंत्रित कर सकते हैं। तो क्रोध की दिशा आपको जो है बदलनी है, है ना, उसको नियंत्रित करना है, कितना क्रोध करना है, कब करना है, हैं, और कितना ज़्यादा करना है, कितना कम करना है, वो सब नियंत्रण जो है अपना होता है। लेकिन ये नहीं कि क्रोध ना करें, क्योंकि माता को भी जो है क्रोध करना पड़ता है बच्चे के ऊपर, नहीं तो वो सुधरेगा नहीं बच्चा। तो एक माता है अपने बच्चे पर क्रोध नहीं करती थी, तो वो जो भी चीज़ें छोटी छोटी चुराता था तो वो जो है खुश होती थी, बेटा तो बड़ा अच्छा है, हर काम में माता जो है खुश होती थी। तो आगे चलकर क्या हुआ, बहुत बड़ा चोर बना। और जब उसको फांसी हुई तो जज ने पूछा कि तुमको फांसी होने वाली है, अंतिम इच्छा क्या है? बोला माता से मिलना। तो माता ही रोती हुई तो उसका उसने नाक काट ली अपनी माता की। तो जज ने कहा कि तुम तो मरने वाले हो, तुमने अपनी माता की नाक क्यों काटी? बोले इसी ने जो है मेरे ऊपर क्रोध नहीं किया, इसने मुझे क्रोध नहीं किया, मैं बिगड़ा और आज मैं फांसी पर चढ़ रहा हूँ। तो माता भी जो है क्रोध करती है। माता यशोदा ने भी कृष्ण पर क्रोध किया, वो एक शिक्षा है, एक शिक्षा है। वो भी भगवान ने शिक्षा की स्थापना की है कि जो है 5 साल से कम छोटे बच्चे पर प्रहार नहीं करना है। लेकिन क्रोध कैसे करना है, उसको बांधो। तो बंधा हुआ होगा तो वो विचार करता रहेगा कि मैंने क्या गलती की, मैंने क्या गलती की, मुझे कैसे सुधरना है। और ऐसे आपने मार दिया एक झापड़, बेहोश हो गया बेचारा, उसे क्या पता उसने क्या गलती की थी क्या नहीं तो बच्चे को थोड़ा समझाना पड़ता है। तो भक्तिविनोद ठाकुर ने भी जो है, भक्ति सिद्धांत सुरथी ठाकुर 3 साल के थे, 3 साल की अवस्था में तो आम मौसम का आम था, खा लिया है ना। तो उन्होंने प्यार से उनको मतलब कहा कि ये ऐसा नहीं करना चाहिए, है ना। तो उन्होंने इतना माना अपना अपराध कि जीवन भर आम नहीं खाया। लेकिन माता पिता को जरूर है कि कितना क्रोध करें बच्चे को सिखाने के लिए, सुधारने के लिए, तो क्रोध की बहुत आवश्यकता है। अगर आप क्रोध नहीं करते हैं तो जो दुकानदार होगा उसकी पूरी दुकान ही लुट जाएगी ना। तो क्रोध की बहुत आवश्यकता होती है। तो क्रोध वाचो वेगम, वाणी का वेग है तो सहन करना है, यानी कि वाणी का वेग ही बंद कर दो कि बोलो ही नहीं। वाचो वेगम, क्रोध वेगम, मन का वेग, तो मन का वेग भी आपको नियंत्रित करना है, उसकी दिशा को सुधारना है। सही, ये मन के वेग को आप बंद नहीं कर सकते, क्रोध के वेग को बंद नहीं कर सकते, वाणी के वेग को बंद नहीं कर सकते, है ना। तो ये चीज़ जो है व्यवहारिक नहीं है कि क्रोध ना किया जाए, ठीक है ना। नारद जी ने क्रोध किया, नरगोबर्मन गिरी को दंड दिया, वृक्ष बनो और मेरी कृपा से वृक्ष रूप में तुम्हें याद रहेगा कि तुम्हें क्या दंड मिला है, क्यों दंड मिला है, तुमने क्या गलती की थी, सोचते रहो, ठीक है ना। तो क्रोध हमें इतना करना होता है कि जिससे जो व्यक्ति गलती करता है उसको गलती का एहसास हो कि उसने कुछ गलती की है और आगे मैं ना करूं। तो ये क्रोध जो है बहुत आवश्यक है। वाणी का वेग, क्रोध का वेग, ये सब चीज़ें जो है क्या है कि इनको हमें नियंत्रित करना होता है, बंद नहीं करना होता है, ठीक है ना। और कोई चर्चा है किसी की, या कोई प्रश्न है, या मैं प्रश्न करूँ? हाँ जी, पीछे हाथ उठाया, लेकिन अगर माइक से आवाज़ नहीं आती तो फिर आना, आगे आना पड़ेगा। आवाज़ अच्छा, इनको दो माइक, शायद आवाज़ आए, अगर नहीं आई तो फिर आगे आना पड़ेगा। हाँ बोलिए।
गुरुजी, जैसे हम तुलना करते हैं कि ये जब स्वप्न में होते हैं तो स्वप्न में जो है हमें कई तरह के आनंद भी मिलते हैं, कष्ट भी मिलते हैं।
एक सेकंड, आपने कहा जो हम स्वप्न देखते हैं तो
हमें आनंद मिलता है और कष्ट भी मिलता है,
आनंद मिलता है, कष्ट मिलता है,
और हम उसको जो है उसी हिसाब से रिएक्ट भी करते हैं,
उसके अनुसार रिएक्ट करते हैं।
और फिर हमें बताते हैं कि जैसे वो सुख और दुख सब जो है वो रियल नहीं थे, अनरियल थे, मतलब वो सत्य नहीं थे, उसी तरह जो है हम शरीर नहीं है, आत्मा है, और जो हमारे साथ जो हो रहा है
ठीक है। अच्छा प्रश्न,
तो
बहुत अच्छा प्रश्न, ठीक है समझिए। देखिए जगत जो है स्वप्न कहा जाता है, जगत को स्वप्न कहा जाता है। ये स्वप्न भी क्या होता है, वास्तविकता पर आधारित है, आप समझिए, जो सपना है ये भी वास्तविकता पर आधारित होता है। आपने सपने में जो कुछ देखा, तो जो आपने जागृत अवस्था में जो कुछ देखा है, तो उसके आधार पर ही आप स्वप्न देखते हैं। तो स्वप्न जो है काल्पनिक नहीं है कि आप कहें कि स्वप्न में जो कुछ देखा है वो जो है जागृत अवस्था में नहीं है, वास्तविकता में नहीं है। तो जो मायावादी लोग बोलते हैं कि जगत मिथ्या है, स्वप्न के समान मिथ्या है, तो स्वप्न के समान हम कह सकते हैं। स्वप्न में जैसे आप संबंध बनाते हैं, कुछ देखते हैं, और वो जो है फिर अनित्य है, फिर वो जो है चला जाता है, अनित्य है। तो आप इस प्रकार से हम कहते हैं कि जगत अनित्य है। और जो मिथ्या, अगर कभी हम जगत मिथ्या कहते भी हैं, तो इसमें भाव क्या है मिथ्या, कि जगत को जो मैं भोगना चाहता हूँ कि ये मेरा है, ये विचार मिथ्या है। आप समझ रहे हैं? अगर हम कभी कहते संसार मिथ्या है, जगत मिथ्या है, अगर हम कहते हैं, तो उसमें भाव जो है ये होता है कि मैंने जो अपना माना है कि ये मेरा है, मेरा अधिकार है, मेरा नियंत्रण है, और मेरे भोग के लिए है, मैं भोगूं इस जगत को, तो ये विचार मिथ्या है। मायावादी जो कहते हैं कि आप जो कुछ देख रहे हैं वो सब मिथ्या है, वो है ही नहीं, केवल मैं ही हूँ अकेला, वो उनका ये कहना है, तर्क उनका ये है कि स्वप्न में आपने जो कुछ देखा, तो स्वप्न में आपने शहर देखा, दिल्ली शहर देखा, और बड़े मकान देखे, बहुत गाड़ियाँ देखी, और मान लो पहाड़ भी देखे, और तालाब भी देखे, नदियाँ भी देखी, सब कुछ देखा। जब आप जागते हैं तो आप केवल आप ही हैं और कुछ नहीं है। तो उनका ये कहना है, उनका जो है शब्द जाल जो है बड़ा, मतलब वो है, शब्दों का जाल जो है बहुत बढ़िया बनाते हैं। शब्दों का जाल समझिए क्या है, कि वो क्या कहते हैं भाई, सपने में आपने जो कुछ भी देखा, आपका घर है, परिवार है, भाई है, बहन है, सब कुछ देखा आपने, जब आप जागते हैं तो कुछ नहीं होता, आप ही अकेले होते हैं। उसी प्रकार से जगत में कुछ नहीं है, केवल मैं ही हूं, केवल मैं ही हूं और कुछ नहीं है। ये गलत है, ये गलत है। स्वप्न में आपने जो कुछ देखा वो जागृत अवस्था के आधार पर है, वास्तविकता पर आधारित है। स्वप्न में आपने जो कुछ भी देखा है वो वास्तविकता पर आधारित है। तो आप ऐसे नहीं कह सकते हैं कि मतलब वो स्वप्न जो है मिथ्या है, वास्तविकता पर आधारित है स्वप्न। या जैसे मान लो कहते हैं जगत जो है ये सांप रस्सी को, जैसे आपने सांप मान लिया तो ये भ्रम है, वो रस्सी पड़ी है और आपने उसको सांप मान लिया, ये भ्रम है। उसी प्रकार से जगत जो है ये एक भ्रम है, आपको भ्रम हो रहा है। उनके शब्दों का जाल जो है, आप देखिए शब्दों का जाल कैसे बनाते हैं। वो कहते हैं कि रस्सी पड़ी है सामने और आप जो है उसको सांप समझ रहे हैं, तो ये आपका भ्रम है। उसी प्रकार से जगत नहीं है, जगत एक भ्रम है। तो देखिए, आपने रस्सी को सांप समझा तो सांप ही होता है, आपने सांप को देखा तभी तो आप सांप समझ रहे हैं, तो सांप भी एक वास्तविकता है कि नहीं, है ना। तो रस्सी को आप सांप समझ रहे हैं, वो भ्रम हो सकता है, लेकिन वो वस्तु तो है, जो आप समझ रहे हैं वो वस्तु तो है। इसी प्रकार से जगत में जितने भी जीव हैं, ये सब नित्य हैं, और एक मैं नित्य हूँ। तो इसलिए गीता में सबसे पहले भगवान ने जो सिद्धांत की स्थापना की है, न त्वेवाहम जातु नासम न तुम ने मे जनाधिपा न चैव न भविष्यामा सर्वे वयम अतः परम। न तो कभी ऐसा है कि मैं नहीं था, कभी कोई समय ऐसा रहा कि मैं नहीं था, नहीं हाँ, न तुम, न कभी ऐसा समय था कि तुम नहीं थे, न कभी ऐसा समय था ये सब लोग नहीं थे, न चैव न भविष्य, और आगे भी ऐसा कभी समय नहीं होगा कि मैं नहीं रहूंगा, तुम नहीं रहोगे, ये सब लोग नहीं रहेंगे, सब नित्य हैं। जितने भी जीव हैं, प्रत्येक जीव व्यक्तिगत रूप से नित्य है। इस सिद्धांत की स्थापना गीता में भगवान ने की है, और यहां अगर आपने गलती कर दी तो फिर सब कुछ गलती हो जाएगी। एक सिद्धांत कि जो आत्मा है, जो जीव है, वो नित्य है, आप अपने कर्मों के अनुसार शरीर बदल रहे हैं, ये अपने कर्मों के अनुसार शरीर बदल रहे हैं, यह प्रत्येक जीव भगवान का दास है, और वो भी नित्य दास है, आप सब भगवान के नित्य दास हैं। तो दो जीव मिलकर के भी एक नहीं बन सकते, एक जीव से दो जीव नहीं बन सकते, टूट नहीं सकता जीव, अच्छेद्योजम। एक जीव को तोड़ के दो जीव नहीं बन सकते, दो जीव मिलकर के एक जीव नहीं बन सकते। तो गीता का जो सिद्धांत है, अगर यहां गलती कर दी आपने तो फिर वो गलती बढ़ती जाएगी। जैसे मान लीजिए आप लक्ष्य की ओर चल रहे हैं और दिशा आपने थोड़ी बदल दी, थोड़ी सी दिशा बदल दी तो क्या फर्क पड़ेगा? जितना आगे बढ़ेंगे उतना दूर रास्ते से हो जाएंगे कि नहीं। इसलिए बहुत सावधानी से हमें अध्ययन करना है शास्त्रों का। जब भगवान बता रहे हैं प्रत्येक जीव नित्य है, है ना, अब वो जो कह रहे हैं बहुत गलत बोल रहे हैं, बहुत गलत बोल रहे हैं कि एक मैं ही हूं, बाकी एक ब्रह्म ही है, पूरा जगत मिथ्या। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, ब्रह्म सत्यम जगत सत्यम। क्यों? जगत भगवान का बनाया हुआ है, जगन्नाथ उनको हम क्यों कहते हैं? जगत के नाथ हैं, है? अब ऐसा कैसे हो सकता है कि जगत के नाथ हैं और जगत मिथ्या हो? जिसके वो नाथ हैं वो जगत मिथ्या हो? जगत कर्ता है, जगत को उत्पन्न करने वाले भगवान हैं वो मिथ्या हो, कैसे कह सकते हैं? मान लीजिए आपने कोई बड़ी अच्छी आर्ट बनाई है, बहुत बढ़िया एक रचना बनाई है, कोई चित्र बनाया है, बहुत बढ़िया चित्र बनाया है, है ना, आपने बना इतना बड़ा चित्र बनाया है, और मैं कहूँ मिथ्या है, ये है नहीं कुछ भी, तो जो बनाने वाला उसको कैसा लगेगा? जगत कर्ता भगवान है, जगत भगवान ने बनाया, जगत की रचना भगवान ने की। आज के विज्ञान का जो उद्देश्य है वो ये होना चाहिए कि जगत में जो है जो भी आश्चर्य दिखाई देते हैं, देखो भगवान ने कैसे कैसे आश्चर्य बनाए। शरीर की रचना भी जो है कितनी जटिल है, कितनी जटिल है, और छोटे छोटी चीज़ों में भी, शरीर के छोटे छोटे हिस्से में भी जो है कितनी बारीकी है। तब देखो तो भगवान के आप जो है इस तरह से गुणगान कर सकते हैं, तो भगवान का गुणगान कर सकते हैं हर चीज़ में। हाँ, एक घास का पत्ता है उसको देख के भगवान का गुणगान कर सकते हैं। प्रभुपाद कहते हैं कि वैज्ञानिक घास का एक पत्ता भी नहीं बना सकते, घास का एक पत्ता भी नहीं बना सकते, नहीं बना सकते। हाँ, गाय में जो है देखो दूध वो घास खाती है और दूध निकालती है, कोई मशीन बनाओ ऐसी कि घास डालो और दूध निकले, नहीं बना सकते, है ना। प्रभुपाद के मच्छर, एक मच्छर है जो है कैसे उड़ रहा है, एयरप्लेन, इतना छोटा एयरप्लेन बनाओ, मच्छर जैसे उड़ता है, एयरप्लेन बनाओ इतना छोटा, नहीं बना सकते। तो भगवान की जो रचना है, भगवान की जो कारीगरी है, ये जो है आप देख करके भगवान का गुणगान कर सकते हैं। साथ में ये भी समझो ये दुखों का स्थान है, ये दुखों का स्थान है, हमें वहाँ जाना है, तो वहाँ भगवान की कैसी रचना होगी आध्यात्मिक जगत, जब उसकी छाया, ये छाया है, हाँ, इसमें इतनी वैरायटी, इतनी विविधता, इतना आश्चर्य। तो भगवान का जो असली वैकुंठ धाम जो नित्य जगत है, ये अनित्य जगत है, वो नित्य जगत है, वो भौतिक जगत है, या वो आध्यात्मिक जगत, ये भौतिक जगत आध्यात्मिक जगत, उसकी छाया, छाया में इतना आश्चर्य है, तो असली वस्तु में कितना आश्चर्य होगा। तो हम इस प्रकार से समझना है, ठीक है ना। तो अभी कुछ समय है हमारे पास, और कोई प्रश्न किसी का, या मैं प्रश्न करूं? हाँ, इनको मांग दिया। अब आवाज अगर नहीं आती तो पास में आना पड़ेगा।
आखिर बुरी बात से अगर सहमत हुआ जाए तो फिर उसको संगमय को कैसे समझाएं?
सुना नहीं पड़ा।
आपकी पूरी बात को स्वीकार कर लिया जाए,
मेरी पूरी बात को स्वीकार किया जाए
तो संगमय को कैसे समझाएं?
असतो, ठीक है, असतो माँ सद्गमय, बिल्कुल सरल है। असत, असत का मतलब अनित्य, सत का मतलब नित्य। भगवान का शरीर सत है, हमारा शरीर असत, असत का मतलब मिथ्या नहीं है, अनित्य है। असत है, है? हमारा शरीर असत अचित निरानंद है, असत का मतलब टेम्परेरी अनित्य है, अचित का मतलब ज्ञान रहित अज्ञान, निरानंद आनंद रहित। भगवान का शरीर सत चित आनंद, तो ये जो जगत है असत है, असत का मतलब है अनित्य है, मिथ्या नहीं है। और फिर हमने कहा अगर मिथ्या कहें तो संसार मिथ्या कहते हैं, संसार मिथ्या है। संसार का मतलब ये मेरा ये मेरा ये सब मिथ्या है, ये सब मिथ्या है, है? अभी जैसे मैंने सत्य मान लिया ये सब मेरे भाई हैं, ये मेरा कुटुंब है, ये मेरा घर है, ये क्या है, ये विचार मिथ्या है आपका, ये मेरे भोग के लिए मैं इसको भोगूं मैं उसको भोगूं, ये मेरे अधीन मेरा नियंत्रण इसके ऊपर मेरा नियंत्रण इसके ऊपर, गलत है, मिथ्या। मेरा नियंत्रण नहीं है किसी के ऊपर, भगवान का नियंत्रण है, मैं अपना नियंत्रण मान रहा हूं, विचार मिथ्या है, संसार मिथ्या है। तो कभी जगत को मिथ्या कह सकते हैं, लेकिन इस भाव से मिथ्या कहिए कि आपका नियंत्रण जो आप सोच रहे हैं वो मिथ्या है, आपका नियंत्रण नहीं है, आप अपने को भोक्ता समझ रहे हैं, है? आप अपने को नियंता समझ रहे हैं, ये विचार आपका मिथ्या है, ये माया, ठीक है ना। धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद की जय।